मेरी बहन, तुम्हारे शौहर के बारे में अभी तक कोई भी इतला नहीं मिली। मेरी बहन, 10 दिनों से तुम रोजाना यहाँ आ रही हो और पूछती हो कि कोई खबर हुई। अगर कोई खबर मिली, चाहे छोटी सी भी खबर हो तुम्हारे शौहर के बारे में, कोई सुरागात आया तो फौरन तुम्हें इतला देंगे। लेकिन आप फिर कल सुबह यहाँ होंगी, तशरीफ ले जाइए, जाइए मेरी बहन।
आपकी गाड़ी मैंने पार्किंग से निकाल ली।
मेरा अबू के घर चलिए प्लीज।
कामयार साहब ने आपको बुलाया कि घर आइए, कुछ काम है।
मेरा अबू के घर चलिए प्लीज।
एक बात कहूं,
आपका सर बेहतर है?
ठीक है, आप जो चाहे तंज कर लें। लेकिन कामयार साहब का क्या? कामयार साहब उस घर में तन्हा पड़े हुए, परेशान हो रहे हैं और कोई भी नहीं है वहां पर, बिल्कुल तन्हा है। उनका सब कुछ जलकर राख हो गया है। इस वक्त हम सब हुशी खान के लिए परेशान हैं। आप अपने माँ बाप की पनाह में चली जाएंगे, कामयार साहब कहाँ जाएंगे? उन्होंने सब कुछ हुशी खान के लिए किया है। उन्होंने हुशी खान को वनक वाले घर में जबरदस्ती नहीं भेजा था कि वहां डेकोरेशन चेंज करे। वो चाहते थे कि हुशी मियां को अपने हाथों से पुलिस हवाले ना करे। अगर आप होती तो इस पर राजी होती कि वो जाकर इकबाल जुर्म कर ले? उन्होंने सब कुछ हुशी खान लिए।
मैं किसी से नाराज नहीं हूं दाऊद साहब, आजकल मैं ऐसी ही हो गई हूं। अब चल रहे हैं या मैं दूसरी गाड़ी ले लूं? मेरे अब्बू के घर चलो।
कम से कम बच्चों को उनके पास ले जाने दें।
हेलो जी, कहिए।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिएगा, मेरा कस्टमर नंबर 213 है। आपका नंबर एजेंसी से लिया है। क्या आप अपना मोबाइल फ़ोन इन खातून को दे सकते हैं जो आपकी गाड़ी में हैं?
जी हाँ जी हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। लीजिए आपसे काम है इनको।
मुझसे?
जी
फरमाइए। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, उस ना इंसाफ इंसी ने अकरम के जहेज के सामान को एक ट्रक में डलवा कर हमारे घर भिजवा दिया है। बुजुर्ग भी गुस्से में घर से बाहर निकल गए, कह रहे थे कि अम्मी हाफिज को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे याद रखे। अब कहाँ है खुदा के लिए, जल्द से जल्द फौरन वापस आ जाए हाफिज के, अम्मी हाफिज से सब कुछ कर रहा।
ठीक है ठीक है, ये लो भैया, माफ करना, जरा सब वापस चले चलो।
Thank you. السلام علیکم.
تو بہو بیگم تم سیدھی اصل بات پر اتر آئی، جو دل میں آیا کر لیا. اکرم، اقدس، بزرگ اور دوسروں کا دل تو دل ہی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، سب کو ایک ساتھ ہوا میں اڑا دینا چاہتی ہو. سارا سامان اکٹھا کرتی ہو، اپنے نئے گھر سے اکرم کے جہیز کو گفٹ پیپر میں لپیٹ کر بزرگ کے گھر بھیج دیتی ہو.
وہاں سٹور روم نہیں ہے.
وہ اکرم کا گھر ہے.
نہیں ہے.
ہے.
جب مالک مکان گھر سے نکال رہا ہے تو کیا کروں، سامان اٹھا کر سڑک پر چلی جاؤں، خیمہ لگا کر وہاں بیٹھ جاؤں کیا؟
مالک مکان کی بات کا جواب ہے، وہ کافر تو نہیں ہے. اسے صورتحال بتاتی، اسماعیل کی حالت بتاتی، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ نرم پڑتا ہے یا نہیں.
کسی کے سامنے اپنا رونا رونا اچھا نہیں.
رحم اور مروت، وہ آتی ہے.
رحم اور مروت مجھے کس سے سیکھنا چاہیے تھا؟ اسماعیل سے.
رحم یعنی اکرم. تم سمجھتی ہو یہ بال میں نے دھوپ میں سفید کیے ہیں؟ میں پاگل ہو گئی ہوں، کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں. تم نے جگہ کم ہونے کی وجہ سے اکرم کا جہیز واپس کیا.
دھیرے دھیرے میں اس نتیجے پر پہنچ رہی ہوں کہ آپ میرے معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں.
مداخلت؟ اپنے ہاتھ میں پانی لیے میں آگ کے قریب گھوم رہی ہوں، یہ مداخلت ہے؟
کون سی آگ؟ آگ تو آپ کے بڑے بیٹے کے داماد کی لگائی ہوئی ہے.
بزرگ،
بزرگ گیا بھاڑ میں. اس رات اسپتال کے سین میں تم سے کہا تھا کہ اگر اکرم کو ساتھ لے جاؤ گے تو ہمیشہ اس کے ساتھ جانا ہوگا. کہا تھا یا نہیں؟ کہا تھا یا نہیں؟
جی کہا. جی جی.
تو کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ ذمہ داری سے نہ بھاگنا. کہا تھا یا نہیں؟ میں نے کہا تھا اب جب تم اکرم کے ساتھ جانا ہی چاہتے ہو تو ہمیشہ اس کے ساتھ جانا ہوگا، اور اگر تم نہیں جاؤ گے تو نتیجہ خود بھگتو گے. میں نے کہا تھا یا نہیں لڑکے؟
کہا تھا.
ہاں تو کہا تھا. تو ٹھیک ہے.
میں نے کہا جوتے سمیت میرے گھر میں آ گئے ہو.
جاؤ جاؤ اپنی ہانڈی دیکھو.
ایک دوسرے سے لڑو نہیں،
مداخلت نہ کریں. یہ بلڈوزر کے ساتھ میرے گھر میں آئی، میری پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. ابھی ایک ٹرک میں جہیز واپس بھیجا ہے اور پھر کہہ رہی کہ جوتے.
میں نے یا تمہارے بھاگے ہوئے داماد نے تمہارا گھر برباد کیا؟
میں امیر حافظ کی بات کر رہا ہوں.
لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات تمہارے داماد کی ہی ہو، اس کی بات کی وجہ سے نہیں. کیا کوئی جگہ ہی نہیں؟ میں نے اس عورت کی غیر موجودگی میں اسپتال میں اپنے بیڈ کے ساتھ والی کرسی پر اس کی یاد بھلا دی ہے، اور اس وقت میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال آ رہا ہے، ایسا سوال جو ایک بڑی ہڈی کی طرح میرے گلے میں پھنسا ہوا ہے. تم شروع سے ہی جانتے تھے کہ تمہارا داماد ہی قصوروار ہے، اسی نے آگ لگائی، اس کے باوجود مجھے پھنسوا دیا، پورے محلے کے سب سے شریف آدمی.
مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، اور چونکہ کچھ نہیں معلوم تھا اس لیے میری کوئی غلطی نہیں ہے.
मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैंने अपने आप को गुनाह से बचाया। ये तो खुदा ही जानता है, वो जानता है कि वो किस तरह मेरी गलतियों का इजाला करे। तुम्हें मालूम है कि मुझे किसी भी शख्स का मखरूज होना नहीं पसंद है, और नहीं हूं एक सेकंड के लिए भी नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि अपने बेटों को सिखाओ कि उसे मर्द होना चाहिए। वक्त नहीं मिला ना?
नहीं, वक्त नहीं मिला। इसके बदले में मैंने उससे कहा कि लड़के अपने अतराफ में गौर से देखो। उसने देखा लेकिन कोई मर्द दिखाई नहीं दिया कि मर्दानी सीखता। सारी की सारी तुम्हें मिली है बड़े भाई। हाँ बड़ा भाई, जब तुम्हारा भाई अस्पताल में पड़ा हुआ एड़िया रगड़ रहा था तो तुमने कहा कि औलाद भाड़ में जाए, जाकर देखो कि मेरा भाई जिंदा है या मर गया। बीवी कौन है मेरी?
तुम्हारी बीवी मैं हूँ जो तुम्हारे साथ पूरी हो गई है। मेरा एहसान है।
एहसान है, एहसान है। इसे पता ही नहीं है कि 20 साल से हर दिन ज्यादा जुनूनी, ज्यादा फिक्रमंद, ज्यादा सफर होती जा रही है। अरे भाई, दुनिया में दूसरे लोगों के भी तो बच्चे होते हैं। अमीर हाफिज के पैदा होने के बाद वो नहीं मुस्कुराहट और वो मोहब्बत कहाँ गई? क्या दुनिया भर की औरतें बच्चा पैदा करने के बाद अपने शौहर की तरफ से तमाम तवज्जो, मोहब्बत और मुस्कुराहट को खत्म कर देती है जो तुमने किया? इन कुछ दिनों में मुझसे क्यों ना पूछा कि तुम शुरू से ही बुलहवस थे, आप हो गए हो? क्या मुझे अपने बच्चे से जलना चाहिए कि काश मेरी बीवी की जो मुस्कुराहट उसके लिए है उस जैसी मेरे लिए भी हो? भाई मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तो मोहब्बत की जरूरत है ना। एक घर एक मेज और सिर्फ एक कप चाय, वो भी अमीर हाफिज के लिए। एक घर बिस्तरों की 2 अलमारियां और स्त्री शुदा कपड़ों की 2 अलमारियां, वो भी सिर्फ अमीर हाफिज के लिए। बात सिर्फ चाय और स्त्री शुदा कपड़ों की नहीं है, समझी? बात तवज्जो देने की है, बात देखे जाने की है। इस घर के सामने कुत्ते को बांधो तो अभी तुम कदम घर से बाहर नहीं निकालोगे कि वो 1000 बार नखरे करेगा, तुम हिलाएगा कि ताकि उसे देखा जाए। तो फिर क्या इंसान को देखे जाने की जरूरत नहीं होती? कहाँ तुम्हारी आंखें, कहाँ तन्हाई, कहाँ मोहब्बत? क्या तुम्हें पता है कि इन सारे बरसों में मेरे सामने, अपने शोहर के सामने भी तुम सफर स्कार पाने रही? इसलिए कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं था कि मैं शोहर हूं। एहसान जताने की बात है? कैसा एहसान? अच्छा अम्मी, बड़े और छोटे की बात है, अगर हम किसी को अपना बड़ा ना मानना चाहे तो ये बता क्या करना होगा?
मैं तुम पर अपनी बुजुर्गी जताने नहीं आया हूँ। कम अज कम मुझ में तो ये लियाकत नहीं थी इस्माइल साहब। मैंने जो भी किया वो बहुत ही कम था। मैंने अपने आप को बस छोटा ही बनाया, इतने कि तुम बड़े हो गए, ऊंचे हो गए, बड़े हो गए, इतने बड़े कि मेरे सामने खड़े होने लगे। तो खड़े रहो, इतनी देर तक खड़े रहो कि हकीकत समझ में आ जाए। मैंने तो अपनी उंगली शहद में डुबो कर जिसके मुंह में भी डाली, उसने शहद के साथ मेरी उंगली भी काट ली।
शादी करना चाहो तो मेहर का इंतजाम हो ताकि तुम्हें बेइज्जती ना लगे।
सीधा सादा इस्माइल बहुत काम करता है, पूरी एक हुकूमत है। की वजह से हासिल किया है।
तुम अगर तुम में गैरत होती तो अकरम के बेइज्जती के बारे में सोचते, अपनी बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचते।
गैरत के बारे में मुझे बताने और जताने की जरूरत नहीं है। रही बात तुम्हारी बेटी की इज्जत की, तो मैंने शादी और निकाह और बारात का दिखावा किसके लिए किया था? इसलिए कि तुम्हारी इज्जत बनी रहे। किया था या नहीं किया था बताओ? तुम्हारा हाथ तो सिर्फ मेरे बेटे पर ही उठना जानता है, तुम्हारा बड़ापन सिर्फ बच्चों को मारने और बच्चों पर हाथ उठाने के लिए है।
मेरा हाथ लोमड़ी सिफत और नमक हराम लोगों पर उठता है। नमक हराम।
भाई साहब बहुत ज़हमत किया आपने।
बहुत शुक्रिया।
इन कार्टूनों में टूटने वाली चीज़ें हैं, बीच बीच में रखो कि नुकसान ना पहुँचे, ऊपर तक ना भरना। पिछले कुछ बरसों में चीनी माल ने उसके शौहर को बर्बाद कर दिया था। उसका शौहर जूतों का काम करता था, लेडीज जूतों का। उसका नाम मिकाइल था। जोरा के शौहर का नाम ये कि मुझे कैसे मालूम हुआ जोरा का शौहर काम तो किस तरह चीनी माल की वजह दिवालिया हो गया। रहने दो, ये कि दिवालियापन का सबब उसका सबब कुछ उसके हाथ से चला गया, जो कि एक 20 मीटर की दुकान थी, उसके पास कुछ नहीं था कि किसी का मकरूज रहता, ये भी रहने दो। ये कि मुझे मालूम है कि दिवालिया होने के बाद भी उसने उफ नहीं की और ड्राइविंग करके और गाड़ी चलाकर उसने अपने घर वालों का खर्चा चलाया, ये भी रहने दो। ये कि मुझे ये भी मालूम है कि एक रात उसने गाड़ी चलाते वक्त अपनी बीवी जोहरा के लिए एक गुलदस्ता खरीदा था कि घर ले जाकर उसे देगा और उसी रात उसका इंतकाल हो गया, ये भी रहने दो। मैं ये सब बताना नहीं चाहता लेकिन मेरी नाकिस अकल मुझसे कहती है कि आप उससे मिलना चाहते हैं, जोहरा से, क्योंकि आप समझती हैं कि आपको उसकी बददुआ लगी है। ठीक है, आपको ले चलूंगा अभी इसी वक्त, आपको ले चलूंगा ताकि आप उससे मिल लें और आपका दिल हल्का हो जाए। आप अपने शौहर पर तवज्जो दीजिए, आपके शौहर बर्बाद होते जा रहे हैं, वह ऐसी चीज की तरफ जा रहे हैं जिसकी इब्तदा ही इंतहा है, ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं कि जिसकी इब्तदा और इंतहा एक ही है, तबाही। अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि बद्दुआ ने आपकी जिंदगी खराब नहीं की, गलतियों ने यह काम किया। एक दूसरे को ना समझने से बर्बादी आती है, एक दूसरे के पीछे अब मुसलसल एहानत और बुराई करने से जिंदगी खराब होती है। आप कहती हैं जोरा और बद्दुआ, ठीक है, मैं आपको उससे मिलवाने के लिए ले चलूंगा। उठिए, अपनी जिंदगी को संभालिए, अपनी गलतियों से सीखिए, इस्माइल को देखिए।
मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, मुश्किल दिन। उन छोटे और बारीक महलों में पड़ोसियों का मजाक उड़ाना, पीठ पीछे बात करना, इशारे, क्या हुआ है जो उसके शौहर ने उसे वापस भेज दिया। बातें बहुत ज्यादा थी, मेरा भाई मेरा मेहर उड़ाता था और मुझे सुनाता था। उड़ाना क्या था और सुनाना क्या था। तुम लोगों ने अपनी शादी एक शानदार हॉल में की थी, मुझे अभी भी याद है। शादी के बाद जब तुमने अपना हाथ इस्माइल के हाथ में दिया और हॉल से बाहर आई तो रोड के उस तरफ खड़ी में खून के आंसू बहा रही थी। आसमान की तरफ देखा और कहा, या खुदा कहाँ हो, मुझे भूल गए क्या। फिर अचानक एक मोटरसाइकिल वाले के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया और वहीं बेहोश हो गई मैं। जब हॉस्पिटल में मुझे होश आया तो मेरे सिराने मेरी माँ थी और बगल वाले बेड में एक औरत थी जिसके भाई का नाम मिकाइल था। 6 महीने नहीं हुए कि मिकाइल का आना जाना शुरू हो गया, वो भी किस वक्त, जिस वक्त मैं इस दुनिया के हर मर्द से बेजार थी। अपनी माँ के कहने पर उसे घर आने दिया और कह दिया इस बेजारी के बारे में। जूते के कारोबार में था और पढ़ा लिखा और बावफा। उसने कहा मैं कभी तुम्हें पीठ नहीं दिखाऊंगा। सच कह रहा था, कभी पीठ नहीं दिखाई। बहुत आया और गया। एक दिन जब वो फिर अपनी माँ और बहन के साथ हमारे घर पे आया तो, और जब मेरे पास कोई बहाना नहीं रहा तो मैंने उसे देखा और कहा अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपना नाम बदल दो। उस दिन तक जो शर्त मैंने रखी थी उसने सब मान लिया था। उस दिन पहली बार उसने मुझे ना कहा। मैं समझ गई कि मैं उसे चाहने लगा। हमारी शादी को एक महीना भी नहीं हुआ था कि उसने मुझे फिर पढ़ने लिखने में लगा दिया। मैंने इश्क को मिकाइल के साथ सीखा। जंग के वक्त जंगजू से पाई था और जब घर में होता तो घर की मदर होता। जंग जब खत्म हो गई तो हमारी दो बेटियां थी, परिवश और परिमेहर। मिकाइल को जंग का हिस्सा नहीं चाहिए था तो उसने फिर अपनी दुकान खोली। जंग के सिपाही सुलह करने वाले से ज्यादा प्यारे होते हैं। हमारी बेटियां 20 साल की हो गई और मिकाइल की यादें जिंदा करती हैं। पढ़ रही हैं और उनका ध्यान पढ़ाई और खुदा की तरफ है और खुदा की रहमत हमारी जिंदगी में है। कभी कभी मैं अपने साथ सोचती हूँ कि ये जो इतनी सारी खुशियां मुझे मिली हैं मैं इनके लायक हूँ भी कि नहीं, सही तरह से शुक्र अदा किया कि नहीं। कभी तुम्हारे और इस्माइल के बारे में नहीं सोचा और कभी तुम लोगों का बुद्धा नहीं। मुझे मिकाइल और उसके खुदा से इतना मिला है कि मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरी बेटियां नूडल्स बहुत पसंद करती हैं और आप अगर रुके तो एक और आदमी को तो हम खिला ही सकते हैं। वाकई नाश्ता बहुत ही ज्यादा था दोनों को, भूख भी लगी है, बस दिल चाहता है घर जाके फौरन आराम।
मुझे तो सिर्फ सोना है।
मुझे भी।
चलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी।
खुशामदीद बेगम साहिबा।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, बच्चों से नाराज ना हो बेगम साहिबा, जवान है, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लीजिए ना। उफ़ प्लेट लाना भूल गई बेगम साहिबा, मेरा आधा सामान अभी कमरे में ही है, अभी जाकर लाती हूँ, माफ कीजिएगा।